निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि। तो सम्यक दर्शन तो अपने आप में ही निर्मल है, तो फिर उसकी निर्मलता के मायने क्या है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के क्षय क्षयोपशम और उपशम से होने वाली जो परिणामों की निर्मलता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। सो सम्यक दर्शन के साथ तो तत्व चिंतन ही नहीं है, विषय कषाय का चिंतन भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि के एकमात्र तत्व चिंतन ही हो ऐसा नहीं है, विषयों का चिंतन भी सम्यक दृष्टि सराग अवस्था में करता है। वीतराग सम्यक दृष्टि होवे तो बात जुदी है, लेकिन सराग अवस्था में तो तत्व चिंतन के साथ साथ विषय चिंतन भी है, लेकिन दर्शन विशुद्धि में तो एकमात्र तत्व चिंतन ही है। इतना ही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर है। सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है कषायों की मंदता से, वो कषायों की मंदता होती है व्रत नियम और संयम से, ऐसा आचार्य भगवंतों का कथन है। तब हम देखें कि 25 दोषों से रहित वह जो सम्यक दर्शन है, दृष्टि की निर्मलता है, उसमें और अधिक विशुद्धि कैसे हम बढ़ाएं ताकि सम्यक दर्शन की निर्मलता हमें प्राप्त हो, दर्शन विशुद्धि हमें प्राप्त हो। सम्यक दर्शन में तो अपने आत्मा की निर्मलता का श्रद्धान होता है, और दर्शन विशुद्धि में इतनी निर्मलता आती है कि प्राणी मात्र के भीतर भी वैसा ही आत्म तत्व है जैसा कि मेरे भीतर है। सो मैं अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण भी चाहता हूं। दर्शन विशुद्धि में आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी निहित है, और तीर्थंकर प्रकृति के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है। तीर्थंकर प्रकृति मात्र आत्म कल्याण की भावना भाने के नहीं वाले के नहीं होती है, जो आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाता है उसी के लिए तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। जरा अपनी दृष्टि को विवक्षा समझते हुए समझना पड़ेगा, नहीं तो कई लोगों को मेरी भावना की लाइनें भी जरा मुश्किल में डालती हैं कि औरों का उपकार करूं। अरे जिंदगी न कर रही, औरों को उपकार करो तो अपनों करो। ऐसा मन में भाव आता है सो भैया विवक्षा समझना। यह तो सब जानते हैं कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता अधमा अधमा। सबसे श्रेष्ठ तो आत्म कल्याण की भावना है, और देह की सेवा शुश्रूषा करना मध्यम है, और वो भी कब? जबकि जिस देह से और आत्म कल्याण किया जा रहा हो उस देह की चिंता करना, जो देह विषय कषाय में लगी होवे उसकी चिंता नहीं करना, वो तो पर है। तो पर चिंता अधमा अधमा, सबसे पहले तो पर गई है और बाकी सब तो पर बाद में, पहले तो जा है पर, इसको तो स्व मान के बैठी और चिंता इसी की करते रहते। तो वास्तव में तो पर चिंता के मायने है इस देह की चिंता में अपना जीवन नष्ट कर देना, ये अधम से अधम है, और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना तो अधम है ही। काम और इच्छाएं उन्हीं की पूर्ति में जीवन व्यतीत करना ये सब समझते हैं, लेकिन अपन ने पर चिंता के लिए सीधा अर्थ ले लिया दूसरा कोई, भाई दूसरा तो यही देह है और दूसरे की देह भी दूसरी है, लेकिन आत्म तत्व उसके भीतर जैसा है वो मेरे ही जैसा है। मैं तो उस आत्म तत्व के कल्याण की बात कर रहा हूं, सो मेरा और तेरा उसमें नहीं बनता, उसमें तो आत्म तत्व ही है। सो प्राणी मात्र के भीतर जो आत्म तत्व है उसके कल्याण की भावना करना ये पर चिंता नहीं कहलाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आचार्य महाराज उदाहरण देते हैं कि किसान भावना भाता के पानी बरसे तो संगे जावी खेत के हमारे अकेले खेत में बरसे, वो भाए भी तो कछु तुम्हारे खेत में ने बरसे सब में। और फिर बाद में जब पानी बरस जाता है और फसल अच्छी हो जाती तो क्या कहता कि हमने तो सबके खेत में पानी बरसे जा भावना भाई पी से हम सबकी फसल हम ही काट लेंगे, ऐसा करता क्या भाई? भावना तो भाएगा कि पानी बरसे तो सबके यहां बरसेगा, लेकिन फसल जब आएगी तो अपनी काटे। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना में भी आत्म कल्याण की भावना निहित है, और आत्म कल्याण की भावना में भी प्राणी मात्र के कल्याण की